नमस्कार भारत, तारीख 6 मार्च दिन मंगलवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। मेघालय में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे कॉनराड संगमा, समारोह में हिस्सा लेंगे अमित शाह समेत बीजेपी के कई नेता।
इसमें कनक संगमा जी तो शपथ लेंगे ही, इसके साथ कैबिनेट स्ट्रक्चर को भी कुछ कुछ शपथ दिया जाएगा।
त्रिपुरा में सरकार गठन के पहले सहयोगी IPFT ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल, वहीं यूपी उपचुनाव में कांग्रेस का हाथ नहीं होगा सपा की साइकिल के साथ।
उपचुनाव में सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, ये हम अलग लड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है हमारा प्रत्याशी जीतेगा भी।
और चुनाव में हार के बाद इटली के पूर्व PM रेंजी का पार्टी नेता पद से इस्तीफा, कहा विपक्ष में बैठेंगे।
Mi sento garante di un impegno morale, politico e culturale. Abbiamo detto in campagna elettorale.
लेकिन पहले विश्व समाचार।
विश्व समाचार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से। देश के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है। राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दरअसल मेघालय में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। राज्य में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 21 सीटें मिली थी, लेकिन भाजपा अपनी 2 सीटों के साथ नेशनल पीपल्स पार्टी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने जा रही है। त्रिपुरा विधानसभा के चुनावों के परिणामों के बाद प्रदेश के विभिन्न इलाकों से हिंसा की खबरें मिल रही हैं। खासतौर पर राजधानी अगरतला के पास बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों में हिंसा की खबर है। पश्चिम त्रिपुरा प्रशासन ने हिंसा को देखते हुए CRPC की धारा 144 लागू कर दी है। पश्चिम त्रिपुरा के जिलाधिकारी मिलिंद रामटेक के मुताबिक निषेधाज्ञा 13 पुलिस स्टेशन इलाकों में लागू की गई है, जो अगले 2 दिन तक प्रभावी रहेगी। वामपंथी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि परिणामों के बाद दल विशेष ने उनके कार्यालयों को ही सिर्फ निशाना नहीं बनाया, बल्कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में इटली में संपन्न हुए चुनावों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया है, लेकिन 2 पार्टियों के नेता सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। 5-स्टार मूवमेंट पार्टी 1/3 वोट के साथ इन नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं एंटी इमिग्रेंट लीग का कहना है कि सेंटर राइट गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से देश की कमान उसे मिलनी चाहिए। इन हालातों को देखते हुए सरकार बनाने में अभी हफ्तों का समय लग सकता है। नतीजों को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मत्तेओ रेंजी ने सत्ताधारी पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ की घोषणा से बहस छिड़ी हुई है। ट्रंप ने कहा था, हमारे बेहद बेवकूफाना व्यापार सौदों और नीतियों की वजह से हर साल $800 अरब का व्यापार घाटा हो रहा है और उन्होंने इसे समाप्त करने का प्रण लिया था। इसके बाद शनिवार को उन्होंने यूरोपियन यूनियन निर्मित कारों को लेकर धमकी दी थी। जनवरी में उन्होंने सोलर पैनल और वॉशिंग मशीनों को लेकर टैरिफ की घोषणा की थी। इस मुद्दे पर अमेरिका के पूर्व व्यापार सचिव गैरी लॉकर ने कहा कि सिर्फ व्यापार समझौतों पर ही अमेरिका का ध्यान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा,
China is really trying to focus on innovation and the new industries of the future, such as artificial intelligence and robotics.
चीन नई खोजों और रोबोटिक्स जैसे नए उद्योगों पर ध्यान लगा रहा है। अमेरिका को भी अपना वक्त और ऊर्जा वहीं लगानी चाहिए। बेशक हमें व्यापार समझौतों में किसी गैर बराबरी के मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए, चाहे वो समझौते चीन के साथ हों या यूरोप के साथ हों, लेकिन हमें समझना होगा कि व्यापार युद्ध में किसी की जीत नहीं होती और इसलिए हमें भविष्य के उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए। गैरी लॉकर के शब्द, आप सुन रहे हैं BBC समाचार। चीन की राजधानी बीजिंग में नेशनल पीपल कांग्रेस के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति के कार्यकाल पर लगी सीमा को हटाए जाने का स्वागत किया। जल्द ही चीन की संसद संविधान के उस संशोधन को पारित कर देगी जिससे राष्ट्रपति शी जिनपिंग अनिश्चितकाल के लिए पद पर बने रहेंगे। सालाना संसदीय सत्र की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ली कोचंग ने कहा कि राष्ट्रपति की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था वृद्धि कर रही है। उन्होंने कहा, 5 साल से हम पार्टी की केंद्रीय समिति की योजनाओं को लागू करने के लिए निष्ठा से काम कर रहे हैं। समिति के नेतृत्व में शी जिनपिंग रहे हैं। जो मुख्य काम हमने किया वो ये कि विकास की अपनी नीति पर बने रहे और नए तरीकों के साथ स्थिरता भी सुनिश्चित की। ली कोचिंग के शब्द। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम योंग उन दक्षिण कोरिया के शांति प्रतिनिधिमंडल के लिए डिनर का आयोजन कर रहा है। ये पहली बार है जब उनके राष्ट्रपति बनने के बाद वो दक्षिण कोरिया के अधिकारियों से मिल रहे हैं। दक्षिण कोरिया की टीम का नेतृत्व सुरक्षा अधिकारी कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। सरकार बनेगी तो सूरत कैसी होगी, कौन अगुवाई करेगा? ये सवाल भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में भी पूछा जा रहा है और यूरोपीय देश इटली में भी। इटली में हुए चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। नमस्कार भारत में हम आगे इटली की बात करेंगे। त्रिपुरा में अकेले दम पर बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या दिक्कतें हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत पूर्वोत्तर भारत के उस राज्य से जहां सरकार की सूरत तय हो चुकी है। ये राज्य है मेघालय, जहां नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता कॉनराड संगमा आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 21 सीटों के साथ राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन 19 सीटें जीतने वाली एनपीपी ने दूसरे दलों के सहयोग से बहुमत जुटा लिया। सुनिए दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी के नेता कॉनराड संगमा आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले एनपीपी ने बीजेपी और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया था। राजभवन में सुबह 10:30 बजे आयोजित होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। एनपीपी केंद्र में एनडीए के साथ है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में बने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में भी शामिल है। मंगलवार को राजभवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर जानकारी देते हुए मेघालय प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता बासु चक्रवर्ती ने बीबीसी से कहा,
जो कार्यक्रम है इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी एवं हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी आएंगे। इसमें कनक शर्मा जी तो शपथ लेंगे ही, इसके साथ कैबिनेट स्ट्रक्चर को भी कुछ शपथ दिया जाएगा। देखिए बीजेपी में हमारे तो दो आसन है, दो आसन में एक को दिया जाएगा, मिस्टर हेक को दिया जाएगा कैबिनेट, वो कौन सी दी जाएगी वो काली स्पष्ट ही होगा।
इस बीच सोमवार को HSPDP पार्टी ने शिलोंग प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन कर एनपीपी बीजेपी के गठबंधन में बनने वाली सरकार को समर्थन नहीं देने की घोषणा की है। HSPDP के पास दो विधायक है, लिहाजा इससे फिलहाल के लिए एनपीपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 60 सीटों वाली मेघालय विधानसभा में कांग्रेस 21 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी हुई है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जितनी संख्या की जरूरत है वो कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस नेता मुकुल संगमा यूडीपी चीफ डॉन कपूर राय के बंगले पर गए थे और उनके सामने 2.5 साल मुख्यमंत्री काल का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बात बनी नहीं। ऐसे में कांग्रेस के पास अब विपक्ष में बैठने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
कॉनराड संगमा सरकार बना रहे हैं, लेकिन वो मिली जुली सरकार की अगुवाई करेंगे। ऐसे में सरकार कितनी स्थिर होगी? हमारे साथी नवीन नेगी ने कॉनराड की बहन और पूर्व सांसद अगाथा संगमा से यही सवाल किया।
मुझे पूरा भरोसा है कि ये एक स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, क्योंकि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और एक रिस्पेक्टेड एक लीडर है, जिनको सिर्फ एनसीपी ही नहीं लेकिन अलग दलों के लोगों ने भी उनको डिमांड किया था, उसी के लिए संगमा हमारे चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनके लीडरशिप के अंदर ये एक सरकार स्टेबल रह के हम 5 साल इसको कंप्लीट करेंगे और हम एक अच्छी सरकार बनाएंगे।
मुख्यमंत्री की दौड़ में अगाथा आपका नाम भी चल रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप पीछे हट गई और भाई कॉनराड को जो है सीएम बनने का मौका मिल गया?
देखिए ये इलेक्शन भी हमने उनके लीडरशिप के अंदर ही लड़ाई हमने की है और उनके लीडरशिप के थ्रू ही हमको जो मैंडेट मिला है, तो ही इज द मोस्ट फिट पर्सन टू रन दिस गवर्नमेंट और उन्हीं के लीडरशिप को आज अलग अलग दलों ने भी एक्सेप्ट किया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड ऑल आर अदर MLAs। तो किसी और को लीडरशिप लेने की अभी कोई गुंजाइश ही नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं है।
आपके पिताजी PA संगमा की जो एक लीगेसी थी और वो कांग्रेस के साथ इतने वक्त तक रहे, अब आप बीजेपी के साथ सरकार बनाने तक को तैयार हैं, तो कैसे अपने पिताजी की उस लीगेसी को आप आगे बढ़ाकर ले जाएंगी?
देखिए, अगर आप पहले हिस्ट्री देखेंगे, जब मेरे पिताजी हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे तो वो एक एनडीए कैंडिडेट के दौर पे ही इलेक्शन में भी खड़े हुए थे और उनको एनडीए ने ही सपोर्ट किया था, तो वो सपोर्ट उनके समय से हमारे पास है। और उसके बाद भी जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है, वहाँ पे हमारे भाई जो एमपी थे उन्होंने ही एनडीए को भी सपोर्ट दिया है, तो एट डिफरेंट लेवल्स हमने उनके साथ काम किया है और इस समय भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि द सिचुएशन रिक्वायर्स इट।
मेघालय में एक बड़ा तबका मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस की एक बड़ी आबादी है, किस तरीके से बीजेपी के साथ आपका गठबंधन चल पाएगा?
देखिए, हमारे गठबंधन सिर्फ डेवलपमेंट लाइंस पे है, ये हमने बहुत ही क्लियरली बोला है। इसमें कोई रिलीजन और कोई भी कास्ट एक्सेट्रा के लाइंस पे हमने गवर्नमेंट बनाने के लिए सोचा नहीं है, तो हम सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी भी एक ऐसी पार्टी है जो डेवलपमेंट पे फोकस दे रही है। इन सब बातों को फिजूल में बोलने से इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें डेवलपमेंट पे फोकस करना है।
आपकी सरकार की सबसे बड़ी जो प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं, वो क्या रहेंगी? अब
डेवलपमेंट, ऑब्वियसली हमें डेवलपमेंट पे फोकस करना है, हमें गुड गवर्नेंस पे फोकस करना है और हमारे मेघालय में बहुत सारे सिचुएशंस है जिसमें बदलाव लेके आना है, जिनको अच्छा करना है, तो इन सब को ही देखकर हमने सरकार बनाई है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपनी तरफ से जो काम करेंगे उसको अगर आप देखेंगे मेघालय के डेवलपमेंट पे ही फोकस करके हम करेंगे और यही हमारा मेन एजेंडा है।
ये थी अगाथा संगमा और अब बात त्रिपुरा की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। चुनाव में बीजेपी को 35 और उसके सहयोगी दल इंडिजीनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को 8 सीटें हासिल हुईं। लेकिन सरकार गठन के पहले आईपीएफटी ने मुख्यमंत्री पद पर दावा कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी नेता नितिन गडकरी त्रिपुरा जा रहे हैं। हमारे साथी दिलीप कुमार शर्मा त्रिपुरा की राजनीति और उथल पुथल पर नज़र बनाए हुए हैं और इस समय फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 8 सीटें और सीएम पद पर दावा, आईपीएफटी की क्या ये मांग सिर्फ बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए है?
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, एक तरह से ये दबाव बनाने के लिए ही किया जा रहा है क्योंकि जब ये शुरुआत में जब ये ट्राइबल इलाकों में बीजेपी जब घुसने का प्रयास कर रही थी उस समय उन्होंने आईपीएफटी संगठन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले ली थी क्योंकि जो आईपीएफटी है इनका प्रमुख एजेंडा है अलग त्रिपुरा लैंड, यानी त्रिपुरा से इनको एक अलग राज्य चाहिए। और जब इन्होंने अलायंस किया और ये जब दोनों मिलकर लड़े और इतना अच्छे नतीजे आए, उस समय जो चुनावी कैंपेन था उसमें बीजेपी ने आईपीएफटी को बिल्कुल नियंत्रण में रखा और इनको चुनावी कैंपेन में इस तरह के बयानबाजी से थोड़ा मना के रखा कि आप इस अलग राज्य ना लाएं क्योंकि बीजेपी शुरू से त्रिपुरा के विभाजन से
मना करती रही है। बीजेपी इस मांग के समर्थन में नहीं है, लेकिन जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत अकेले दम पर मिल गया है, हालांकि बीजेपी साथ चलने की बात कर रही है, आज मीटिंग होनी है, कौन कौन उस मीटिंग में होगा?
देखिए, अभी बीजेपी ने जैसे ही कल एनसी देव वर्मा जो इस आईपीएफटी के जो प्रमुख है उन्होंने कल बीजेपी को बिना सलाह मशवरा किए बिना अगरतला प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर ये बात कह दी कि भाई जो मुख्यमंत्री होगा वो आदिवासी जनजाति का व्यक्ति होगा, यानी इनडायरेक्टली इन्होंने कह दिया कि नहीं वो आईपीएफटी से आप ले, तो ये तो संभव नहीं है क्योंकि बीजेपी के पास 35 है और इनके पास 8 है, लेकिन इन्होंने बिना सलाह मशवरा कर एक ऐसी चाल चल दी जिसमें बीजेपी के लिए एक पेंच फंस गया है। आज नितिन गडकरी और जुएल ओराम खुद यहाँ आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे बात करने के बाद फिर आगे 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 का रास्ता निकलेगा। मुझे जहाँ तक पता है कि अभी आईपीएफटी के मेरे एक व्यक्ति से बात भी है, उन्होंने अपना नाम यहाँ आपके कार्यक्रम में उनका नाम लेने के लिए मना किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं मानते हैं इस बात को, अगर किसी आदिवासी उससे नहीं लाते क्योंकि बीजेपी के पास भी आदिवासी चेहरा तो है लेकिन उस तरह का अनुभव नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी जीत है, प्रदेश को चलाना है, 2019 में फिर लोकसभा चुनाव है, तो उस तरह अनुभवी लोग नहीं है, इसलिए हो सकता है
विप्लव देव का नाम सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि गठबंधन बना रहेगा या ये जो मांग है ये मीटिंग के बाद सुलझ जाएगा मुद्दा, या तनाव आगे बढ़ सकता है?
देखिए आईपीएफटी, मुझे लगता है कि देखिए आईपीएफटी बहुत सालों से यहाँ आंदोलन करते आ रहा है अलग राज्य की, उनको पता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के का हाथ पकड़े बिना वो इस चीज में सफल नहीं हो सकते, इसलिए गठबंधन से वो एकदम से नहीं हटेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो सरकार में शामिल ना हो और बाहर से समर्थन दे।
जी बहुत शुक्रिया दिलीप इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर 11 मार्च को उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी का समर्थन मिलने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि उसे कांग्रेस भी अपना समर्थन दे सकती है, लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया है। उधर सपा और बसपा के गठजोड़ के बाद बीजेपी की ओर से प्रचार की कमान संभाले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विरोधियों पर हमले की धार तेज कर दी है। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
उपचुनाव के लिए सपा और बसपा ने हाथ भले ही मिला लिया हो, लेकिन आक्रामक प्रचार के मामले में अभी भी वो सत्तारूढ़ बीजेपी से काफी पीछे दिख रही है। चुनाव प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने संभाल रखी है। त्रिपुरा और नागालैंड में जीत की चर्चा करते हुए सोमवार को उन्होंने गोरखपुर में सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला।
सपा जब आती थी तो सपा कहती थी कि बसपा की सरकार के समय के स्मारकों को हम तोड़ेंगे, बसपा आती थी तो कहती थी कि हम सिपाही को ध्वस्त कर देंगे। दोनों लोगों को जनता ने उनके ध्वस्त कारनामों के कारण सत्ता से बेदखल किया। आज दोनों के बीच फिर से गठबंधन होने की चर्चाएं दिखाई दे रही हैं। जैसे लगता है कहीं कोई उफान आता है तो सांप और सिकंदर सब एक साथ मिलकर के एक उसमें खड़े हो जाते हैं। आज वही स्थिति इन लोगों के बीच बन चुकी है।
इससे पहले योगी ने रविवार को फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में भी दो जनसभाएं की। योगी ने पहले फूलपुर में और फिर गोरखपुर में भी पिछली सरकारों से अपनी सरकार की तुलना कुछ इस तरह की।
कभी अयोध्या में प्रतिबंध लगा करके, कभी किसी अन्य आयोजन को रोक करके, आज तो प्रदेश के अंदर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, कोई रोक नहीं सकता। लोग कह रहे थे कि इस बार होली और जुमा एक ही साथ पड़ रही है, तो हमने कहा जुमा तो 52 दिन मनाया जाएगा, होली तो साल में एक ही दिन मनाया जाएगा, होली में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए।
जानकारों का कहना है कि योगी ने इसके जरिए चुनावी एजेंडे को भी तय कर दिया है। वहीं बसपा के साथ मिलने के बाद गोरखपुर और फूलपुर में समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल ने भी समर्थन देने की घोषणा की है। निषाद पार्टी और पीस पार्टी तो पहले ही समर्थन दे चुकी हैं। इस बीच खबर ये भी रही कि कांग्रेस भी दोनों सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने के बावजूद सपा को समर्थन दे सकती है, लेकिन कांग्रेस नेता इस खबर को कोरी अफवाह ही बताते रहे। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी का कहना था कि उपचुनाव में तो नहीं, लेकिन आगे ऐसा हो सकता है।
अब ये तो उपचुनाव है, उपचुनाव में या लोकल बॉडीज के इलेक्शन में तो सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, यहाँ भी मौका मिला है। ये हम अलग लड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है हमारा प्रत्याशी जीतेगा भी, क्योंकि मजबूत स्थिति में है। परंतु मैं समझता हूँ कि जब लोकसभा का चुनाव आएगा या आम चुनाव होंगे तो उस समय इस पर बैठकर बात हो सकती है।
कांग्रेस ने फूलपुर से मनीष मिश्र और गोरखपुर से सुरहिता करीम को अपना उम्मीदवार बनाया है। गोरखपुर सीट आदित्यनाथ योगी के इस्तीफे से, जबकि फूलपुर सीट उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई थी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। इटली में हुए चुनाव में हार के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मैत्तेओ रेंजी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व पीएम ने कहा है कि उनकी पार्टी गठबंधन के बजाय विपक्ष में बैठना पसंद करेगी। वहीं दो दलों ने सरकार बनाने के अलग अलग दावे किए हैं। पूरी रिपोर्ट सर्वप्रिया सांगवान से।
इटली के मतदाताओं ने 4 मार्च को हुए चुनावों में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं दिया, लेकिन दो पार्टियों के नेता सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। फाइव स्टार मूवमेंट पार्टी एक तिहाई वोट के साथ इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के नेता लुगी दी मायो का कहना है कि ये नतीजा विचारधारा नहीं बल्कि मुद्दों पर आधारित है। लेकिन दूसरी तरफ एंटी इमिग्रेंट लीग पार्टी कह रही है कि सेंटर राइट गठबंधन की वजह से सत्ता उसे मिलनी चाहिए। फाइव स्टार मूवमेंट पार्टी के सदस्य डैनिलो टोनिनेली ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए बात करने को तैयार है।
Oggi il paese deve fare un i vecchi partiti devono fare un salto di qualità. Sono stati troppo attaccati alla
आज पुरानी पार्टियों को बदलने की जरूरत है, लेकिन उन्हें सिर्फ सत्ता और सीटों की चिंता है। अगर वो 99% नागरिकों के मुद्दों को अपनाएंगे नहीं तो फिर उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन मैं दोहरा देना चाहता हूं कि हम पार्टियों से बातचीत के लिए तैयार हैं, खासकर वे पार्टियां जो इटली के नागरिकों के हितों से मतलब रखती हैं। डैनिलो टोनिनेली के शब्द। हालांकि फाइव स्टार मूवमेंट पार्टी ने चुनावों से पहले इसके उलट बात कही थी। पूर्व प्रधानमंत्री मत्तेओ रेंजी ने सत्ताधारी पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस सेंटर लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनावों में खराब प्रदर्शन रहा और उसे 20% से भी कम वोट मिले। रेंजी ने कहा कि उनकी पार्टी ने सरकार में रहते हुए अच्छा काम किया, लेकिन वो इटली में चल रही कट्टरता की लहर को नहीं रोक पाए। उन्होंने साफ किया कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन ना करके विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। पार्टी के नेता सैंड्रो गोजी ने कहा कि उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी का फाइव स्टार पार्टी या लीग के साथ कोई गठबंधन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा,
गुड पार्ट ऑफ द वोटर्स ऑफ द फाइव स्टार मूवमेंट फॉर्मर लेफ्ट वोटर्स, डेमोक्रेटिक पार्टी वोटर्स।
फाइव स्टार पार्टी के वोटर वो हैं जो पहले लेफ्ट को वोट देते थे, डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते थे या दूसरी सेंटर लेफ्ट पार्टियों को, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं योजनाएं हकीकत से दूर हैं। अर्थव्यवस्था के लिए उनका प्रस्ताव भी ठीक नहीं। वहीं लीग पार्टी और हम में कोई भी बात समान नहीं है। सैंड्रो गोजी के शब्द। इटली के चुनावी नतीजों में पॉपुलिस्ट पार्टियों को बढ़त मिली है और डेमोक्रेटिक पार्टी पिछड़ गई है। दनुबे विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उल्रीके गुरोत कहती हैं कि ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से पॉपुलिस्ट पार्टियों का प्रदर्शन अच्छा रहा।
इटली वाज पर्टिकुलरली अफेक्टेड बाय बोथ द यूरो क्राइसिस ऑस्टेरिटी पॉलिसी ऑन द वन साइड बेसिकली नेग्लेक्ट।
इटली की अर्थव्यवस्था मुश्किलों के दौर से गुजर रही है, साथ ही रिफ्यूजी समस्या भी एक और कारण है। इटली रिफ्यूजी समस्या से काफी प्रभावित हुआ है जर्मनी से पहले से, क्योंकि इटली में तो 2012 से रिफ्यूजी आ रहे हैं। इन दोनों वजहों ने इटली के लोगों में नाराजगी पैदा की। प्रोफेसर उल्रीके ग्रोथ के शब्द। किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिलने की वजह से अभी इटली को कई दिनों तक इंतजार करना होगा कि आखिर सरकार बनाने के लिए क्या समझौता किया जाएगा। हालांकि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया, लेकिन पॉपुलिस्ट पार्टियों को मिले समर्थन को देखते हुए इसकी तुलना ब्रेग्जिट और अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव से की जा रही है।
रिपोर्ट सुना रही थी सर्वप्रिया सांगवान, और सर्वप्रिया से ही जान लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या है। जी सर्वप्रिया,
जो पहली खबर है वो तकरीबन सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है और कई दिनों से बड़ा मुद्दा बनी हुई है, वो है एसएससी पेपर लीक मामला। केंद्र सरकार ने अब इसकी जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए हैं, और जो गृहमंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने छात्रों से अब धरना खत्म करने की अपील की है कि अब हमने जांच के आदेश दे दिया, अब अपना धरना खत्म करिए। और ये जो छात्र हैं वो 27 फरवरी से एसएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, और राजनाथ सिंह की अपील के बावजूद अभी भी छात्र डटे हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप हमारी मांग मानेंगे, इसको लिखित में लिख के दीजिए और ये लिखित में ही हमें आश्वासन दीजिए कि इसकी जाँच होगी। और जो दूसरी खबर है वो है कि कांग्रेस के दिल्ली कार्यालय की कुर्की के आदेश हुए हैं, और ये आदेश दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने जारी किए हैं।
यानी कांग्रेस के लिए मुश्किल का दौर हर तरफ से जारी है।
जो इस दफ्तर को जिस ठेकेदार ने बनाया है 15 सालों से, और उसने ये कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उसका 95 लाख रुपया बकाया है जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। जब पुलिस टीम कुर्की के लिए पहुंची तो कार्यालय पर ताला लगा मिला। अब कांग्रेस का भी ये कहना है, और उन्होंने हाईकोर्ट में भी याचिका दी है कि ये भुगतान किया जा चुका है और उनका पक्ष सुना ही नहीं गया
जी।
और एक नवभारत टाइम्स में एक खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को शोपियां में 27 जनवरी को सेना की फायरिंग में मारे गए लोगों के मामले में जो FIR दर्ज हुई है उसमें अब आगे कोई जांच ना करे, अभी उसे कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया है और इसकी सुनवाई अब अगले 24 अप्रैल को होगी। एक्चुअली जो कोर्ट ने कहा है कि ये मामला सेना के अधिकारी का है और उनके साथ किसी आम अपराधी की तरह बर्ताव नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार से भी पूछा कि क्या मेजर आदित्य का नाम आरोपी के तौर पर FIR में लिखा गया है, तो राज्य सरकार ने कहा कि ये जांच के बाद पता चलेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो राज्य सरकार ने कहा कोर्ट में, दरअसल ये उसका अपने पहले रुख से यू टर्न लेना है।
जी बहुत शुक्रिया सर्वप्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में इन दिनों पत्थलगड़ी महोत्सव चल रहा है, इसमें आदिवासी अपने शासन की मांग कर रहे हैं। क्या है ये मांग और इस पर सरकार का क्या कहना है, बता रहे हैं रवि प्रकाश अपनी इस रिपोर्ट में।
खूंटी जिले के कोचांग गांव में पत्थलगड़ी महोत्सव के दौरान मैंने ग्रामीणों की नारेबाजी सुनी। वे लोग ग्राम सभा को सबसे शक्तिशाली मानते हुए अपने इलाके में पारंपरिक शासन व्यवस्था की वकालत कर रहे थे। इनका कहना है कि 5वीं अनुसूची के तहत आने के कारण उनके इलाके में संसद या विधानसभा का कानून लागू नहीं होता। वे मानते हैं उनका इलाका वर्जित क्षेत्र है, यहाँ बाहरी लोगों के घूमने, बसने या फिर व्यवसाय करने पर प्रतिबंध है। इस इलाके में आदिवासियों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जोसेफ पूर्ति ने कहा कि हमारे इलाके में सरकार सामान्य कानून लागू करना चाहती है, हम इसी का विरोध करते हैं।
भारत शासन अधिनियम में आर्टिकल 91-92 में देख लीजिए, इसमें जो स्पष्ट लिखा हुआ है वर्जित क्षेत्र
आंशिक वार्षिक छत्र, इसका अलग ही नियम कानून है, लेकिन वर्तमान जो सरकार है ये संघ राज्य क्षेत्र का सामान्य कानून को ला करके इधर जो है रख दिया, उसी के तहत ये अपना उल्लू सीधा कर रहा है और कह रहा है कि ये गलत है। यहाँ अपना व्यवस्था है, स्वशासन व्यवस्था है, स्वशासन व्यवस्था के तहत हम लोग चल रहे हैं।
खूंटी जिले के कुछ इलाकों में पिछले एक साल से अभियान चलाया जा रहा है। इस इलाके के कई गांवों में पत्थलगड़ी की गई है। इन पत्थरों पर संविधान के हवाले से कहा गया है कि जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम प्रधानी व्यवस्था ही संवैधानिक है। मैंने पत्थलगड़ी वाले कई गांवों में घूमने के बाद कोचांग के ग्राम प्रधान काली मुंडा से बात की। उन्होंने बीबीसी से कहा,
ये मांग तो हम नहीं कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जो संविधान में जो आदिवासियों का जो हक और अधिकार है ये हम समस्त आदिवासियों को बताना चाहते
हैं। आखिर क्यों होने लगी है स्वशासन की वकालत और अब क्या रास्ते हैं आंदोलनकारियों के पास? मैंने युवा आदिवासी नेता शंकर महली से यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार को हमसे बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने हमारे लोगों को बेवजह गिरफ्तार कर लिया है। शंकर महली ने बीबीसी से कहा,
सरकार कहती है कि संविधान का गलत व्याख्या की जा रही है, लेकिन गलत व्याख्या नहीं, संविधान के प्रति इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज अगर हम लोग बोलेंगे, जितने भी समाज के जितने भी बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे ग्राम प्रधान हो, समाज के लोगों को हमारी प्रशासन जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन बनी हुई है, चाहे डीसी के रूप में चाहे एसपी के रूप में, ये हम लोग को जबरन ले जा करके हम लोग को जेल में ठूस दे रहे हैं। कारण क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं और हम अपनी बातों को रख रहे हैं उनके समक्ष, आज हम लोग खड़े हो पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, यही उनको चुभ रही है।
वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास इस पूरे आंदोलन को राजद्रोह मानते हैं। खूंटी में आयोजित एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि बाहरी लोग इस इलाके के आदिवासियों को बड़गला रहे हैं।
सड़क नहीं बनने देना, बिजली नहीं जाने देना, पीने का पानी नहीं जाने देना, ये जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां, ये खूंटी सिमडेगा ये दो तीन जिला में, इसको भी कुचलना है। मैं फिर बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, मैं वैसे क्षेत्र में भी जाऊंगा कौन माई का लाल फूट किया है।
इस बीच झारखंड के नवनियुक्त मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने कहा है कि पत्थलगड़ी करने वाले आदिवासी दरअसल कुछ संदेश देना चाहते हैं, हमें उनकी बात समझनी होगी। ऐसे में सबको इसका इंतजार रहेगा कि सरकार इस मामले का हल कैसे निकालती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के हालिया बयान और सरकार द्वारा पिछले दिनों प्रकाशित कराए गए विज्ञापनों में पत्थलगड़ी को असंवैधानिक करार दिया जा चुका है। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए खूंटी में।
और अब जान लेते हैं खेल की दुनिया की हलचलें क्या है।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। आज सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की ओर, जहां पर आज T20 ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है। इस T20 ट्राई सीरीज में इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका आपस में भिड़ेंगी, जहां पर आज श्रीलंका और भारत का पहला T20 मुकाबला खेला जाना है। आपको बता दें, श्रीलंका के दौरे पर गई भारतीय टीम के इस बार के कप्तान हैं रोहित शर्मा। बात अगर हॉकी की करें तो मलेशिया में चल रहे सुल्तान कप में आज भारत का मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया के साथ और ये भारत का तीसरा मुकाबला होगा। पहले मुकाबले में भारत को अर्जेंटीना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं इंग्लैंड के खिलाफ हुए मुकाबले में ड्रॉ रहा था मैच, और इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला ये मुकाबला भारत के लिए बेहद अहम है। और अगर बैडमिंटन की बात करें तो असम के मंत्री हेमंत विश्व शर्मा को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद से हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि बैडमिंटन एसोसिएशन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के लिए तय मानक के तहत माना जा सकता है। दरअसल कमलेश वासवानी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि हेमंत विश्व शर्मा की नियुक्ति BCCI मामले में कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कोर्ट का आदेश देते हुए कहा गया था कि मंत्री और सरकारी कर्मचारी खेल संस्था का हिस्सा नहीं हो सकते, और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सर्वप्रिया से।
देश के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है। राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। त्रिपुरा विधानसभा के चुनावों के परिणामों के बाद प्रदेश के विभिन्न इलाकों से हिंसा की खबरें मिल रही हैं। पश्चिम त्रिपुरा प्रशासन ने हिंसा को देखते हुए CRPC की धारा 144 लागू कर दी है। हाल ही मेटली में संपन्न हुए चुनावों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया है। फाइव स्टार मूवमेंट पार्टी एक तिहाई वोट के साथ इन नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया राजेश चौहान ने, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने, शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।